ریڈیو تہران کے سبھی شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ما يعملون، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتہن کرپا شیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے توریت، انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے ارتھات ان پر کارے بدھ رہتے، تو نسندیہ وے اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے ایشوریہ وبھوتیاں پراپت کرتے۔ ان میں سے ایک گٹ مدھ مارگی ہے، پرنتو ادھکانش لوگ برے کرم کرتے ہیں۔ ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار کی اور سے جو آدیش آپ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور یدی آپ نے ایسا نہ کیا تو مانو آپ نے اس کے سندیش کو پہنچایا ہی نہیں، اور جان لیجئے کہ ایشور آپ کو لوگوں سے سرکشت رکھے گا، نسندیہ ایشور کافروں کا مارگ درشن نہیں کرتا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، کاریکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ آج منگلوار ہے، اگست کی پہلی، محرم کی 14 اور مرداد ماہ کی 10 تاریخ۔ سبھا میں پہلے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے، وشو سماچاروں کے بعد راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم آپ سنیں گے، اس کے اپرانت ہم آپ کو ساپتاہک کاریکرم سنوائیں گے قرآنی قصے۔ ہماری آج کی سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا یورپ میں اسلاموفوبیا۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا۔ ان کاریکرموں کے بارے میں آپ اپنے وچار ہمیں ای میل کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں hindiradio@wsiribir۔ اسی اور اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ابو مہدی میزائل کو ایران کی دونوں سینوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اسرائیل کی میڈیا کے انوسار حزب اللہ سے جنگ کی پرستھتیاں بن رہی ہیں۔ سویڈن میں پولیس کی اپستھتی میں پھر پوتر قرآن کا انادر کیا گیا۔ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی نیتا آنگ سان سوچی کو آزاد کر دیا گیا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑتنت ایران کے رکشا منترالے نے دیش کی دونوں نو سیناؤں کو ابو مہدی میزائل سونپا ہے۔ یہ لمبی دوری کی مارک شمتا والا میزائل ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے۔ ایران میں آرمی کی نوسینا کے ساتھ ہی پاسداران انقلاب فورس ارتھات IRGC کی بھی نوسینا ہے۔ یہ میزائل الیکٹرانک یدھ میں استعمال ہوگا، جسے رکشا منترالے کے ایرو اسپیس ادیوگ نے بنایا ہے۔ اس کا استعمال ہرمز اسٹریٹ اور تٹوں کی حفاظت کے لیے کیا جائے گا۔ میزائل کا نام عراق کی پاپولر فورس حشد الشعبی کے کمانڈر ابو مہدی المہندس کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ایران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ بغداد میں امریکہ کے ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران کی آرمی کی نوسینا کے پور کمانڈر جنرل خانزادی نے جون 2020 میں کہا تھا کہ ایران لمبی دوری کے ایک میزائل پر کام کر رہا ہے۔
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ لبنان کے حزب اللہ آندولن سے جنگ کسی بھی سمے سے ادھک قریب آ چکی ہے۔ اسرائیل کے میڈیا کا کہنا ہے کہ نیائک سدھار کے معاملے میں حالیہ ہنگاموں سے اسرائیل کمزور ہوا ہے، اور ان حالات میں حزب اللہ سمیت اسرائیل کے دشمن اسرائیل پر وار کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اسرائیل کے سامرک معاملوں کی وشیش ویب سائٹ ولا پر سامرک معاملوں کے وشیشج امیر بہبود نے لکھا ہے کہ 2006 کی لبنان جنگ کے بعد کے برسوں میں اسرائیل کے ورشٹھ سرکشا ادھیکاری کہتے تھے کہ اب ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ کچھ ہی دن چلے گی، کیونکہ حزب اللہ اور حماس میں کوئی بھی لمبی جنگ نہیں چاہتا۔
روس کے رکشا منتری نے اعلان کیا ہے کہ ان کے دیش نے یوکرین کے سامرک پرتشٹھانوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسی بیچ دونوں اور سے حملوں میں کئی عام ناگرک بھی مارے گئے۔ روسی رکشا منتری کا کہنا تھا کہ ہماری دھرتی پر یوکرین کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، جس کے جواب میں روس نے بھی حملے تیز کر دیے ہیں۔ شوئگو نے ایک سینک سماروہ میں کہا کہ روس کے حملوں میں ان یوکرینی سینک پرتشٹھانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو روس کے خلاف آتنکی حملوں میں مدد کر رہے ہیں۔ روسی رکشا منتری کا اشارہ کریمیا میں ہونے والے حالیہ حملوں کی اور تھا، جسے روس نے آتنکی حملے کا نام دیا تھا۔ ان حملوں میں ڈرون ویمانوں کا پریوگ کیا گیا تھا۔ روسی رکشا منتری نے کہا ہے کہ ان حملوں کو دیکھتے ہوئے سرکشا کے انتظام اور بھی پختہ کیے گئے ہیں۔
روس کے راشٹرپتی کے پروکتا نے کہا ہے کہ ان کا دیش یوکرین کے ڈرون حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوجنا بنا رہا ہے۔ दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को क्रेमलिन में संवाददाता सम्मेलन में यूक्रेन की ओर से मॉस्को पर किए गए ड्रोन के हमलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की संभावना पाई जाती है, इसलिए हम उनका जवाब देने की तैयारी में हैं। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकार के हमले यूक्रेन की निराशा को दर्शाते हैं। इस प्रकार के हमलों का मुकाबला करने के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन की ओर से मॉस्को पर 3 ड्रोन से हमला किया गया था, जिनमें से 2 को एंटी एयरक्राफ्ट के माध्यम से मार गिराया। तीसरा ड्रोन मॉस्को में एक ऊंची इमारत से जा टकराया। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इमारत को आंशिक रूप में नुकसान पहुंचा।
स्वीडन में पिछले कुछ सप्ताहों के भीतर 2 बार पवित्र कुरान की बेअदबी की घटनाओं के बाद अब संसद के सामने फिर कुरान की बेअदबी की गई। इस बार भी पुलिस की अनुमति और उसकी देखरेख में ये घटिया हरकत अंजाम दी गई। इस्लामी सहयोग संगठन ने इस रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि डेलीगेशन यूरोप भेजा जाएगा और जो यूरोप की सरकारों के सामने आपत्ति दर्ज कराएगा। डेनमार्क में भी कुरान के अनादर की घटना हुई है। डेनमार्क और स्वीडन की सरकारें कहती हैं कि वे कुरान के अनादर की घटनाओं को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह हरकत अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आती है। मगर दूसरी तरफ इस्लामी जगत से बिगड़ते अपने रिश्तों को दुरुस्त करने की उनकी कोशिशें भी जारी हैं। स्वीडन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम कई इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों के संपर्क में हैं और OIC के सभी सदस्यों को पत्र भेजा गया है। उनका ये भी कहना था कि इस प्रकार की घटनाएं अंजाम देने के लिए पुलिस से अनुमति मिलती है और सरकार इस प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि इस्लाम के खिलाफ इस प्रकार की नफरत की घटनाओं को हम खारिज कर चुके हैं।
पोप फ्रांसिसी ने भी पवित्र कुरान के अनादर की कड़ी निंदा की है। कैथोलिक ईसाइयों के विश्व स्तर के धर्मगुरु पोप फ्रांसिसी ने मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ के अपमान की भर्त्सना की है। उन्होंने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान शरीफ के अनादर की निंदा करते हुए कहा कि यह घृणित काम धर्मों के बीच वार्ता की प्रक्रिया में भी बाधा बनेगा। पोप फ्रांसिस का कहना था कि यह बहुत ही खतरनाक और घिनौनी हरकत है। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु ने यह बात FIS नामक संस्था की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में कही। धर्मों के प्रतिनिधियों पर आधारित FIS संस्था ने पिछले सप्ताह पोप फ्रांसिसी को पत्र भेजा था। इससे पहले भी UAE के समाचार पत्र अल इत्तेहाद को इंटरव्यू देते हुए पोप फ्रांसिसी ने यूरोपीय देशों में पवित्र कुरान के अनादर की कड़ी आलोचना की थी।
म्यांमार की सैन्य परिषद ने एक बयान जारी करके नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता को क्षमादान दिए जाने की घोषणा की है। इस बयान में आंग सांग सूची को आजाद करने की बात कही गई है। सेना के इस बयान के अनुसार आंग सांग सूची के साथ ही इस देश के राष्ट्रपति को भी स्वतंत्र किया गया है। म्यांमार की पूर्व विदेश मंत्री सूची पर भ्रष्टाचार, चुनावी कानूनों में धांधली और उपद्रव के आरोप लगाए गए हैं। वैसे आंग सांग सूची पर यह भी आरोप लग चुका है कि उन्होंने म्यांमार की सेना के अत्याचारों से इस देश के रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने में कोई सहायता नहीं की थी, जिसके कारण उनका विरोध व्यापक स्तर पर किया गया था। याद रहे कि म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 को इस देश की सत्ता हथियाने के बाद आंग सांग सूची को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। सेना का कहना था कि नवंबर 2020 में होने वाले आम चुनाव में धांधली की गई थी, जिसमें आंग सांग सूची का भी हाथ था।
कतर की राजधानी दोहा में अमरीका और अफगानिस्तान के शिष्टमंडलों की बैठक हुई। 2 दिनों तक चली इस बैठक में प्रतिबंधों को हटाए जाने के साथ ही कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बलखी ने बताया कि देश का प्रतिनिधिमंडल आमिर खान मुत्तकी के नेतृत्व में वार्ता के लिए गया था। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली, प्रतिबंधों को हटवाने, अमरीका की ब्लैकलिस्ट से तालिबान के नेताओं के नामों को हटवाने, अफगानिस्तान में आर्थिक अस्थिरता बनाने और मादक पदार्थों से संघर्ष जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। याद रहे कि अफगानिस्तान में अमरीका की 20 वर्षों की सैन्य उपस्थिति के कारण ये देश वर्तमान समय में आर्थिक संकट से गुजर रहा है।
चीन के राष्ट्रपति कहते हैं कि उनका देश पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बनाए रखेगा। शी जिनपिंग ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक संदेश पाकिस्तान के अधिकारियों को भेजा। इस संदेश में कहा गया है कि ये परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत कई अन्य प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद ने सन 2013 में उस समय चीन के साथ एक आर्थिक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे जब पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान के विकास में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। चीन और पाकिस्तान के बीच इस आर्थिक परियोजना को लागू करने के उद्देश्य से आईसीसी नामक एक समिति का गठन किया गया था।
अफ्रीकी देश नाइजर में लगभग 1000 अमरीकी सैनिक पहुंच चुके हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि देश के लगभग 1000 सैनिक नाइजर पहुंच चुके हैं। बुधवार को नाइजर में एक सैन्य विद्रोह हुआ था जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति को नज़रबंद कर दिया गया था। वहां के संविधान को भंग करके सभी संस्थानों को निलंबित कर दिया गया है। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का वो देश है जिसके पास यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। इसी के साथ नाइजर की गणना दुनिया के गरीब देशों में होती है। इस देश पर बहुत अधिक ऋण भी है। नाइजर में होने वाले सैन्य विद्रोह से अमेरिका कुछ अधिक परेशान दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने सन 2021 में ऐलान किया था कि उसने नाइजर में सैन्य सहायता और सैन्य प्रशिक्षण के लिए $500 मिलियन दिए हैं।
भारत में जहरीले हिंदुत्व की हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां पूरा मणिपुर राज्य इसी आग में कई महीनों से जल रहा है, वहीं पर जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में इसी हिंसक विचारधारा से प्रभावित आरपीएफ कांस्टेबल ने 3 बेकसूर मुस्लिम यात्रियों को मार डाला और अपने अफसर की भी जान ले ली। रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान ने सोमवार को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के समीप एक ट्रेन में सवार 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह को पकड़ लिया गया है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। ईरानी नौसेना के कमांडर की रूस की यात्रा पर पेश है एक रिपोर्ट, अहमद अब्बास की जबानी।
ईरान की नौसेना के कमांडर की सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा के आखिरी दिन बड़ी व्यस्तता रही और कई मुलाकातें हुई। मुलाकातों का सिलसिला रूस की नौसेना के प्रमुख निकोलाई योमिनोव से उनकी मुलाकात से शुरू हुआ और जारी रहा। रूस के नौसेना प्रमुख ने इस मुलाकात में ईरान के फ्लोटिला 86 के दुनिया का चक्कर काटने के ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रकार के काम सुपर पावर्स ही किया करते हैं। दूसरे देशों के नौसेना कमांडरों ने भी ईरान की नौसेना के कमांडर एडमिरल ईरानी से मुलाकातों में ईरान की समुद्री ताकत की प्रशंसा की। ब्राजील की नौसेना कमांड के डिप्टी चीफ, श्रीलंका के नौसेना प्रमुख और पाकिस्तान की नौसेना के वरिष्ठ कमांडर ने ईरान की ताकत को विशेष रूप से सराहा और कहा कि ये उदाहरणीय है। एडमिरल शहराम ईरानी का कहना था कि ईरान की नौसेना की ताकत का सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इकरार किया। रूस के नौसेना प्रमुख के ओर से मेहमानों को डिनर पर आमंत्रित किया गया और इस मौके पर भी कई देशों के वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों की मुलाकातों का एक और सिलसिला शुरू हुआ। ईरान, रूस और चीन के बीच एक 3 पक्षीय बैठक भी आयोजित हुई जो महत्वपूर्ण साबित हुई। एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बैठक में उपस्थिति के कई संदेश हैं। एक संदेश यह है कि ईरान को अलग थलग करना संभव नहीं है। एक संदेश दुश्मनों के लिए है कि वो जमाना गुजर गया कि जब वो अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाया करते थे। तीसरा संदेश यह है कि समुद्री क्षेत्र महत्वपूर्ण है सभी देशों के लिए और खास तौर पर हमारे लिए। एडमिरल ईरानी ने बैठक में भाग लेने वाले भारत के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी से मुलाकात की और रूस की नौसेना के संग्रहालय का मुआयना किया। एडमिरल शहराम ईरानी का ये दौरा बहुत सार्थक साबित हुआ। इस दौरे में बहुत अहम मुलाकातें हुईं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की ओर से एडमिरल शहराम ईरानी ने अलग अलग देशों के नौसेना अधिकारियों से मुलाकातों में इस बात पर जोर दिया कि आपसी सहयोग को बढ़ाना जरूरी है और ये साबित करना जरूरी है कि दुनिया अब मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और ये विचार अब विश्व स्तर पर आम होता जा रहा है। फिनलैंड खाड़ी के इलाके से IRIB के लिए सैयद अली दाराबी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
ईरान ने पाकिस्तान में होने वाले आतंकवादी हमले की निंदा की है। पेश है एक समीक्षा मोहम्मद मेहदी की जबानी।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम की बैठक के दौरान होने वाले आतंकवादी हमले की भर्त्सना की है। इस आतंकवादी हमले में लगभग 50 लोग हताहत और 150 से अधिक घायल हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया में कहा, आतंकवादी इस्लाम और उन लोगों की छवि खराब करने के लिए हमले करते हैं जो इस्लाम और कुरान की बात करते हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने पाकिस्तान में होने वाले आतंकवादी हमले की भर्त्सना की और पाकिस्तान सरकार और राष्ट्र के प्रति सहानुभूति जताई है। ईरानी राष्ट्रपति ने एक संदेश जारी करके कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई का परिणाम इसके जिम्मेदारों के अपमान के सिवा कुछ और नहीं होगा। पिछले 2 साल से अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान की सरकार सत्ता में आ गई है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पाकिस्तान में असुरक्षा व हिंसा की घटनाओं में वृद्धि का पड़ोसी देश अफगानिस्तान में राजनीतिक व सुरक्षा परिवर्तनों से कोई संबंध है या नहीं। पाकिस्तान के सैनिक और राजनीतिक अधिकारियों के हालिया बयान इस बात के सूचक हैं कि इस देश में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का संबंध पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी गुटों से है। इसी प्रकार पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि इस देश में होने वाले आतंकवादी हमलों का स्रोत अफगानिस्तान की भूमि है। पाकिस्तान में होने वाले हालिया आतंकवादी हमले की अभी तक किसी गुट ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, इसलिए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया हो, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की बैठक में विस्फोट हुआ है और समस्त गुट जमीयत उलमा इस्लाम का सम्मान करते हैं। इसी बीच अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने पाकिस्तान में होने वाले हालिया आतंकवादी विस्फोट की भर्त्सना करते हुए कहा है कि इस प्रकार के अपराध का किसी प्रकार औचित्य नहीं दर्शाया जा सकता। पाकिस्तानी मामलों के एक टीकाकार फरजाद अमीन इस बारे में कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की बैठक में भीषण विस्फोट कोई आम बात नहीं है। इस आधार पर एक धार्मिक बैठक में, वो भी मौलाना फजलुर रहमान की सदा की बैठक में होने वाला विस्फोट कोई सामान्य बात नहीं है और इसके सुरक्षा और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। रोचक बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम की बैठक में जो विस्फोट हुआ है वो बाजोड़ के कवाली क्षेत्र में हुआ है और ये वो क्षेत्र है जो जमीयत उलमा इस्लाम की बहुत पकड़ व प्रभाव वाला क्षेत्र है। साथ ही कवाली क्षेत्र हालिया वर्षों में तहरीके तालिबान जैसे आतंकवादी गुटों के गढ़ में परिवर्तित हो गए हैं। अभी कवाली क्षेत्र बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम की बैठक में जो विस्फोट हुआ है उसमें मौलाना जियाउल हक हक्कानी मारे गए हैं, जो जमीयत के एक महत्वपूर्ण धर्म गुरु थे और उनकी हत्या से किसी सीमा तक आतंकवादियों के कारणों और लक्ष्यों को समझा जा सकता है, विशेषकर इसलिए कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में हक्कानी गुट की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बहरहाल जो विस्फोट हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है और इससे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार और पाकिस्तान सरकार के संबंध प्रभावित हो सकते हैं और जमीयत उलमा इस्लाम की बैठक में भीषण विस्फोट और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से शांति व सुरक्षा स्थापित करने में पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्रों की शक्ति व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।
और अब रुख करते हैं भारत का। हरियाणा के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
हरियाणा के नूह और सोहला में दो समुदायों यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच जमकर हिंसा हुई जिसमें दो पुलिस कर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है और 70 लोग घायल हुए हैं। देखते देखते हिंसा की आग गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी तक पहुंच गई। यहां दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए। लगभग 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बताया जाता है कि इस तनाव की शुरुआत नूह से हुई जहां हिंदुओं की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव हुआ और पत्थर चले और गोलियां भी दागी गईं। हिंसा को देखते हुए नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट पर भी 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई है और यहां के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार नूह की स्थिति अब नियंत्रण में है जहां अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी हैं, जिन्हें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इन क्षेत्रों में अशांति फैलने के लिए मोनू मनेसर नामक व्यक्ति के वीडियो संदेश द्वारा उस अपील को कथित रूप से जिम्मेदार बताया जा रहा है जिसमें उसने स्वयं भाग लेने और लोगों से बड़ी संख्या में इस यात्रा में पहुंचने को कहा था। मोनू मनेसर हरियाणा के भिवानी के एक गांव में 25 वर्षीय नासिर और 35 वर्षीय जुनैद की हत्या का आरोपी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
सरकार की नाकामी है और सरकार लगता है कि वो खुद चाह रही थी, क्योंकि अब पार्लियामेंट के चुनाव हैं, तो वो चाह रहे हैं कि एक तरह के तनाव का माहौल वहाँ पैदा हो जाए।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लगता है कि अशांति फैलाने की पहले से तैयारी की गई थी। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। जांच हो रही है और दोषी पाए गए लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। गुरुग्राम में भी एक मस्जिद में आगजनी की घटना के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے دوستو, راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم ابھی آپ نے سنا, اور اب پیش ہے ساپتاہک کارکرم قرآنی قصے. قرآن قصے.
دوستو, ساپتاہک کارکرم قرآن قصے کی ایک نکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہے مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے.
دوستو, آج کے کارکرم میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پوتر قرآن کے سورہ شورا کی 27 اور 28 نمبر کی آیتیں کب نازل ہوئی تھیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے دو پوتر نگر مکہ اور مدینہ بہت مشہور ہیں. خباب بن عریس نام کا ایک جوان تھا جو پوتر نگر مکہ میں ام عمار نام کی مہیلا کا غلام تھا. وہ غلام ہونے کے ساتھ ساتھ تلواروں کی مرمت کرنے کا کام بھی کرتا تھا. پیغمبر اسلام اس سے پریم اور اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے.
خباب ایک اچھی پرورتی کا جوان تھا. جب پیغمبر اسلام نے پیغمبری کی گھوشنا کی تو اس گھوشنا کے آرمب میں ہی اس نے اسلام دھرم کو سویکار کر لیا. اس پرکار سے کہ آرمب میں جو لوگ بھی پیغمبر اسلام پر ایمان لائے ان میں اس کی گڑنا چھٹے یا دسویں ویکتی کے روپ میں ہوتی ہے. خباب قریب مسلمان سے تھا. پوتر نگر مکہ کے کافر دوسرے کمزور مسلمانوں کی بھانتی اسے بھی بہت پرتاڑت کرتے اور یاتنا دیتے تھے تاکہ اسلام دھرم چھوڑ دے, پرنتو وہ پروت کی بھانتی اسلام پر ڈٹا رہا اور باقی رہا.
مکہ کے کافر گرم کوچ اسے پہناتے تھے اور پرچنڈ و چلچلاتی دھوپ میں اسے گرم پتھروں پر بٹھاتے تھے تاکہ سورج, پتھر اور کوچ کی گرمی سے شاید اسلام دھرم چھوڑ دے. یہی نہیں, کبھی کبھی کافی ایندھن اکٹھا کرتے اور اس کے بالکل سمیپ جلاتے تھے جس سے خباب کو بہت پیڑا و تکلیف ہوتی تھی. وہ جل جاتا تھا, اس کا چہرہ لال ہو جاتا تھا. اسی طرح کافر اسے پرتاڑت کرنے کے لیے کبھی اسے ننگا کر کے پیٹھ کے بل لیٹاتے تھے.
خباب سوئم اس گھٹنا کو اس پرکار بیان کرتا ہے. ایک دن مجھے ننگا کر کے گرم ایندھن پر سلا دیا گیا. قریش کا ایک آدمی آیا, اس نے اپنا پیر میرے سینے پر رکھا. اس نے اپنے پیر سے میرے سینے کو اتنی دیر تک دبائے رکھا کہ میرا شریر بہت جل گیا اور میرے شریر کی چربی پگھل گئی اور میرے شریر کے ماس نے آگ کو بجھا دیا. آگ سے جلنے کا جو نشان خباب کی شریر پر تھا وہ پوری زندگی اس کے شریر پر باقی رہا.
اسی پرکار اس کی جوانی کے بارے میں آیا ہے کہ جب ام عمار کو یہ پتا چلا کہ اس کا غلام خباب بن عریس نے اسلام دھرم سویکار کر لیا ہے تو اس نے لوہا گرم کر کے خباب کے سر پر رکھا تاکہ اس پرکار سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو چھوڑ دے. اسے جو یاتنا دی جاتی تھی ایک دن اس کی شکایت اس نے پیغمبر اسلام سے کی. پیغمبر اسلام نے اس کی باتوں کو سنا اور اس کے لیے دعا کی اور کہا, ہے پالنہار خباب کی مدد کر.
پیغمبر اسلام کی دعا کے بعد ام عمار کے سر میں درد ہونے لگا اور پیڑا اتنی ادھک ہو گئی کہ وہ درد سے چیختی تھی. نوبت یہاں تک آ گئی کہ کچھ ویدیوں نے اس سے کہا کہ اس درد کو صحیح ہونے کے لیے لوہا گرم کر کے اس کے سر پر رکھا جائے. اس کے بعد خباب لوہا گرم کر کے اس کے سر پر رکھتا تھا.
ایک دن خباب بن عریس پوتر نگر مدینہ کے یہودیوں کی زندگی کو دیکھ رہا تھا. اس نے غریب مسلمانوں اور امیر یہودیوں کی زندگی کی تلنا کی. وہ سوچ میں ڈوب گیا. کچھ چھڑوں کے بعد اس نے سوئم سے کہا, اگر ہمارا دھرم صحیح ہے اور ہم حق پر ہیں اور اللہ کے اچھے بندے ہیں تو اتنی ساری مصیبتیں، بیماریاں اور طرح طرح کی پریشانیاں مسلمانوں کے لیے ہی کیوں ہیں؟ اسی پرکار اس نے سوئم سے سوال کیا کہ اگر یہودی باطل ہیں تو اتنے امیر و دھنوان کیوں ہیں اور وہ اللہ کے بھن بھن نعمتوں سے سمپن ہیں؟ اگر اللہ اپنے ایماندار بندوں کو دوست رکھتا ہے تو انہیں اپنی نعمتوں سے لابھانوت کرنے میں سنکوچ سے کام نہ لیتا اور ہمیں اپنی نعمتوں سے ونچت نہ کرتا۔ اگر اللہ یہودیوں کی دولت لے کر ہمیں دے دے تو کیا ہو جائے گا؟ نشچت روپ سے ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں۔ مگر یہودی نہ کیول اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں بلکہ ادنڈی بھی ہیں اور وہ برائی و بھرشٹاچار کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف نت نئے شڈیانت رچتے رہتے ہیں۔
خبا بن عریس ایک ایسا ویکتی تھا جو کم سے کم پر راضی و پرسن رہتا تھا۔ وہ سادہ جیون ویتیت کرتا تھا، دنیا سے بیزار تھا اور اتیاچاریوں و ادنڈیوں کے سامنے نتمستک نہیں تھا۔ پرنتو یہودیوں کے بارے میں خبا بن عریس کا جو وچار تھا وہ اس سمے کے مسلمانوں میں عام تھا، وشیش کر اس لیے کہ مسلمان نکٹ سے دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کی آرتھک گتویدھیاں یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب مہانیشور نے پوتر قرآن کے سورہ شورا کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل کی۔ ان آیتوں میں مہانیشور کہتا ہے، اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کو ادھک کر دے تو وہ زمین میں ادنڈی بن جائیں گے، مگر اللہ انہیں اتنی ہی روزی دیتا ہے جتنا وہ اچت سمجھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جب نراش ہو جانے کے بعد ورشا کرتا ہے اور اپنی رحمت کو ویاپک کرتا ہے، اور وہ پرشنسنیہ ابھیواوک ہے۔
پوتر قرآن کی ان آیتوں سے بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جب دنیا کی نعمتیں مسلمانوں کے پاس ادھک ہوں گی تو وہ ولستا پورن جیون میں ویست ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اتنا ہی رزق دیتا ہے جتنا وہ اچت سمجھتا ہے۔ آج عام طور پر سماج میں بہت اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ادھک دھن دولت ہے وہ دھرم اور دھارمک شکشاؤں سے دور ہو گئے ہیں۔ روچک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ادھک دولت کے سوامی ہو گئے ہیں وہ نردھن مومنوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ کبھی کسی کو نیچا نہیں دیکھنا چاہیے اور ہر انسان کی قیمت اس کے اندر پائی جانے والی اچھائیوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ اور مہان ایشور پوتر قرآن میں صاف صاف کہتا ہے کہ ایشور کے نکٹ اس کا استھان ادھک ہے جس کا تقوی و بھائی ادھک ہوگا۔
پوتر قرآن کی آیت کی روشنی میں شریشتتا کا ماپدنڈ دولت نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اور اگر اپنے دھن کی وجہ سے کوئی کسی کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے تو واسطو میں وہ خود بہت ہی تچھ و گھٹیا انسان ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں سے شریشت سمجھتا ہے تو اس سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر واسطو میں وہ بڑا و شریشت ہوتا تو کبھی بھی دوسروں کو گری ہوئی نظر سے نہ دیکھتا۔
ایک بار اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہے موسیٰ، میری سب سے بری مخلوق لے کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے بہت سوچا کہ کیا چیز لائیں، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر میں ایک کالا کتا دکھائی دیا جو جناب موسیٰ نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر چلے۔ کچھ ہی قدم چلے تھے کہ سوچا کہ کہیں اللہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ یہ سوچ کر جناب موسیٰ نے کالے کتے کو چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ جب تور نام کے پروت پر حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو اللہ نے ان سے کہا، ہے موسیٰ، میری سب سے بری مخلوق لائے۔ تو حضرت موسیٰ نے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا کہ کالا کتا لے کر آ رہا تھا مگر کیا سوچ کر اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، ہے موسیٰ، اگر آج تم کالے کتے کو میرے پاس لے کر آ جاتے تو تمہاری نبوت تم سے لے لیتا۔
اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کالے کتے کو اس کی سب سے بری سرشٹی کے روپ میں دیکھا جائے تو وہ اللہ اس بات کو کیسے پسند کرے گا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو گری ہوئی نظر سے دیکھے۔ अतः किसी को भी गिरी हुई नजर से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में जिस इंसान के दिल में इस्लाम और पवित्र कुरान की शिक्षाएं पूरी तरह नहीं उतरी हैं।
दोस्तों, यहाँ एक अन्य बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसा जरूरी है, जिस तरह से नाव को तैरने और चलने के लिए पर्याप्त पानी का होना जरूरी है, उसी तरह जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है। परंतु अगर पैसे की माया इस प्रकार दिल में समा जाए कि पैसा ही इंसान का लक्ष्य हो जाए तो मोह इंसान को बर्बाद कर देगी। जिस तरह नाव पानी पर उस वक्त तक तैरती है जब तक वो पानी के ऊपर होती है, परंतु जब पानी नाव में दाखिल हो जाता है और उसे निकाला ना जाए तो धीरे धीरे यही पानी नाव और उसमें सवार लोगों को डुबो देता है। यही हाल उस इंसान का होता है जिसके दिल में धन संपत्ति की माया मोह समा जाती है।
अगर किसी इंसान के पास पूरी दुनिया की संपत्ति हो और उसकी माया मोह उसके दिल में घर न कर पाए तो इस्लाम इस प्रकार की दौलत का विरोधी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दौलत जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग की जरूरत है। दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जरूरी है, मगर धन को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। हदीसों में कहा गया है कि वो व्यक्ति हमसे नहीं है जो दुनिया को दीन के लिए छोड़ दे, और वो व्यक्ति भी हमसे नहीं है जो दीन को दुनिया के लिए छोड़ दे।
दोस्तों, इस हदीस से ये बात भी बिल्कुल साफ है कि धर्म और दुनिया में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। समस्त पैगंबरों और इमामों ने अपनी आजीविका कमाने और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिश्रम किया है। आजीविका कमाने के लिए परिश्रम करना महान ईश्वर की उपासना है। अगर किसी का धन उसे महान ईश्वर की याद से निषेध बना दे तो इस प्रकार के धन की निंदा व आलोचना की गई है। किंतु अगर किसी के पास बहुत अधिक धन हो और वो उसे महानेश्वर की राह में खर्च कर दे तो इसकी बहुत अधिक प्रशंसा की गई है। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का सदाचरण सामने है। उन्हें अरब की रानी कहा जाता था, मगर ईश्वरीय धर्म इस्लाम के प्रचार प्रसार और निर्धनों की सहायता करने में उन्होंने अपना सारा धन खर्च कर दिया। पैगंबर इस्लाम अपनी धर्मपत्नी हजरत खदीजा और उनकी कुर्बानी की हमेशा बहुत प्रशंसा किया करते थे।
ईरान के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और धार्मिक विद्वान शहीद मुर्तजा मुताहरी अपनी किताब नजरी बे निजाम इख्तिसादी इस्लाम में इस प्रकार लिखते हैं, इस्लाम में कभी भी धन संपत्ति की आलोचना नहीं की गई है, न पैसा कमाने की, न लेन देन की और न ही खर्च करने की, बल्कि इन सब पर बल दिया गया है और उसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। इस्लाम के अनुसार दौलत को कभी भी दूर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि दूर फेंकना इसराफ, फजूल खर्ची और हराम है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، کارکرم ابھی آپ نے سنا قرآنی قصے، جسے پیش کیا مریم مہردادی اور محمد مہدی نے۔ اب پیش ہے سبھا کا انتیم کارکرم، یورپ میں اسلامو فوبیا۔
یورپ میں اسلاموفوبیا۔
دوستو، کارکرم یورپ میں اسلاموفوبیا کی چوتھی کڑی کے ساتھ اپستھت ہیں سواتی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، दोस्तों, पश्चिम में इस्लामोफोबिया का इतिहास हालांकि काफी पुराना है, किंतु 21वीं शताब्दी के दौरान इसको बढ़ाने में तीन प्रमुख कारक रहे हैं। पहला कारक तो पिछले दो दशकों के दौरान मुस्लिम समाजों के बारे में यूरोपियों का बदलता हुआ दृष्टिकोण। दूसरा, यूरोप में मुसलमानों के पलायन के बारे में अति दक्षिणपंथी गुटों का गठन। तीसरे, यूरोप में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए संचार माध्यमों और लेखकों की बढ़ती गतिविधियां।
पिछले दो दशकों के दौरान यूरोप में मुसलमानों की आस्था और उनके धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध आक्रमणों में तेजी आई है। अब यह वहां पर सामान्य सी बात होकर रह गई है। यूरोप में सारी ही इस्लाम विरोधी प्रक्रियाएं पूरी शक्ति के साथ अपनी गतिविधियां अंजाम दे रही हैं। मुसलमानों के बारे में घृणा को बढ़ावा देना, झूठी खबरें प्रसारित करना और धार्मिक कार्यक्रमों को सीमित करने की कोशिश बहुत बढ़ गई है।
मुसलमानों और ईसाइयों के बीच होने वाले ऐतिहासिक सलीबी युद्ध या क्रूसेड युद्ध के कारण यूरोप में मुसलमानों को भविष्य के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जाने लगा। इस युद्ध की बातों को कहीं कहीं पर यूरोप में मुसलमानों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। ये काम वहाँ के अतिवादी एवं राष्ट्रवादी गुट आदि करते हैं। इस्लाम को संभावित खतरा मानकर उससे निपटने के लिए यूरोप में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रयास आरंभ किए गए। इसके अतिरिक्त कुछ अतिवादी गुटों की हिंसक कार्रवाइयों के कारण यूरोपीय समाजों में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ।
इन हिंसक कार्रवाइयों को वहां पर इस्लाम से जोड़कर दिखाया जाता है। यूरोप में संचार माध्यमों ने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए आतंकी गुटों की कार्रवाई को इस्लाम से संबंधित बताना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोगों के बीच इस्लाम के बारे में भ्रांतियां उत्पन्न हुई। सर्वेक्षण बताते हैं इसका प्रभाव यूरोपीय समाजों पर बहुत अधिक पड़ा है। इसी के कारण वहां पर जातीय भेदभाव को बढ़ावा मिला।
दोस्तों, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को इस बात से समझा जा सकता है कि यूरोपीय संघ के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने अपने एक संबोधन में दावा किया था कि यूरोप एक बाग की तरह है, बाकी दुनिया के देश जंगल की तरह हैं। अब जंगली और वहशी लोग खूबसूरत बाग पर हमले कर रहे हैं। उनका ये वक्तव्य यूरोप के लोगों की मानसिकता को दिखाता है। हालांकि यूरोपीय संघ के प्रमुख के बयान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ था, जिसके बाद जोसेफ बोरेल माफी मांगने पर बाध्य हुए थे। वैसे तो उन्होंने ये कहकर बात टालने का प्रयास किया कि मेरे वक्तव्य को सही संदर्भ में समझा नहीं गया।
जैसा कि हमने पहले बताया था कि यूरोप में इस्लामोफोबिया का एक अन्य कारक मुसलमानों के पलायन के बारे में अति दक्षिणपंथी गुटों का गठन किया जाना है। इस प्रक्रिया का आरंभिक बिंदु पश्चिमी यूरोप है, जहां से 20वीं शताब्दी में अतिवादी जातिवाद की शुरुआत हुई। 21वीं शताब्दी में अमेरिका ने दो मुसलमान देशों अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए। इन हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में अशांति फैल गई और अशांति के चलते वहां के लोगों ने पलायन करना आरंभ किया। अधिकांश पलायनकर्ताओं ने यूरोपीय देशों का रुख किया। यह वे लोग थे जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इन देशों को गए थे। मुसलमानों के पलायन के इस मुद्दे को वहां पर इस्लामोफोबिया का रूप दे दिया गया।
यूरोप के अतिवादी गुटों ने इस विषय को इस्लाम दुश्मनी के रूप में पेश किया। उन्होंने इन पलायनकर्ताओं के बारे में बहुत सख्त रवैया अपनाया। इन अतिवादी गुटों का कहना था कि पलायनकर्ता या तो यहाँ के रंग में रच बस जाएं या फिर अपने देश को वापस चले जाएं। इस्लाम और पश्चिमी सभ्यता के नियमों में पाए जाने वाले गंभीर मतभेदों के कारण मुसलमान स्वेच्छा से पश्चिमी संस्कृति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि इस्लाम की ईश्वरीय शिक्षाओं से प्रभावित होकर पश्चिम के रहने वाले बहुत से लोग इस्लाम को गले लगा रहे हैं। ये बात वहाँ के अतिवादियों को अखर रही है, इसलिए वे इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। पश्चिम में इस्लामोफोबिया का एक अन्य कारक यह है कि इस्लाम ऐसा धर्म है जिसके भीतर अपने मानने वालों की हर जरूरत का समाधान मौजूद है।
यूरोप की एक तिहाई जनसंख्या का यह मानना है कि वहां पर आने वाले पलायनकर्ता यहां की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए उसका दुरुपयोग करें। उनका मानना है कि इन पलायनकर्ताओं का अस्तित्व अशांति का स्रोत है। हालांकि कुछ वर्षों के दौरान पूरे यूरोप में कई अतिवादी गुट अस्तित्व में आए हैं। इस्लामोफोबिया यूरोप के कई राजनेताओं के लिए एक नस्लवादियों और राष्ट्रवादियों से वोट कमाने का बहुत ही अच्छा हथकंडा बन गया है। हॉलैंड में एसपीजी नामक एक इस्लाम विरोधी गुट है और ये वे लोग हैं जो अजान जैसे मुसलमानों के धार्मिक आयोजनों के विरोधी हैं।
एसपीजी के समर्थक मुसलमानों के विरुद्ध हिंसक और उकसाने वाली कार्रवाइयां करते रहते हैं। यूरोप में एक अन्य इस्लाम विरोधी गुट है जो लेगा नोट के नाम से जाना जाता है। ये वही अतिवादी गुट है जिसने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमानजनक चित्रों वाली टी शर्टें फ्री में बांटी थी। उसकी कामना है कि वो इटली को एक दिन बिना मस्जिद के देखे। उसने सन 2008 में इटली की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसके अनुसार इस देश में किसी भी नई मस्जिद के निर्माण से पहले स्थानीय लोगों से अनुमति ली जाए और फिर वहां के लोगों का इस बारे में एक जनमत संग्रह भी करवाया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय मोर्चा नामक एक फ्रांसीसी दक्षिणपंथी गुट इस देश में दक्षिणपंथ का प्रतीक है। इसका गठन सन 1972 में हुआ था और इसकी संस्थापक मेरिन लोपेन थी। वे चुनावों में हमेशा इस मुद्दे को उठाती थी कि फ्रांस के पलायनकर्ताओं को आने से रोका जाए। उनकी बेटी मेरियन लोपेन मुसलमानों की प्रबल विरोधी हैं। वे इस्लाम को फ्रांसीसी मूल्यों के विपरीत मानती है। उन्होंने अपने एक संबोधन में फ्रांस में मुसलमानों के आगमन को नाजी कब्जे जैसा बताया था। इससे राष्ट्रीय मोर्चे की नेता ने यह भी कहा था कि इस्लामी आंदोलन के सदस्य और वे इस्लामी लोग जो फ्रांस में रहते हुए ड्यूएल नागरिकता रखते हैं, उनके लिए फ्रांस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
यूरोप में मौजूद दक्षिणपंथी दलों में से एक ऑस्ट्रिया में फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया है। इसके भीतर भी इस्लाम विरोधी झुकाव पाया जाता है। जर्मनी में भी पीजीडा नाम का एक इस्लाम विरोधी संगठन सक्रिय है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। पश्चिम एशिया में आतंकवादी गुट के उदय काल के दौर में ये इस्लाम विरोधी गुट जर्मनी में परवान चढ़ा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जर्मनी में पीजीडा नामक इस्लाम विरोधी संगठन को दाइश, नुसरा फ्रंट और बोको हराम की प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। हालांकि दोनों ही गुट पश्चिम की गुप्तचर सेवाओं के मार्गदर्शन में ही अपनी गतिविधियां अंजाम देते हैं।
ब्रिटेन में भी इस्लामी विरोधी कई दल हैं, जिनमें से एक बीएनपी है। इसमें अतिवाद और फासिज्म की ओर से झुकाव पाया जाता है। इसके वर्तमान नेता एडम वॉकर हैं और इसका केंद्रीय कार्यालय ब्रिटेन के विगटन नगर में है। इस अतिवादी गुट का गठन सन 1982 में किया गया था। सन 2000 में उसको राजनीतिक रूप में सफलता भी मिली थी, जिसके अंतर्गत इसकी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। बाद में इस दल का प्रभाव कम होता गया। वर्तमान समय में ब्रिटेन की संसद या स्थानीय स्तर पर उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है।
यूरोप में इस्लामोफोबिया के कारकों में से एक कारक ये भी है कि वहां पर संचार माध्यमों ने इसको फैलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। यूरोप के अतिवादी और दक्षिणपंथी गुटों का कुछ प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ा है। वे संचार माध्यमों के द्वारा इस्लाम की छवि को खराब करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार के लोग और गुट इस्लाम जैसे शांति प्रेमी धर्म की छवि नकारात्मक रूप में पेश करते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य लोगों के ध्यान को इस्लाम से हटाना और उनके बीच यह प्रचलित करना है कि इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है।
यह लोग फिल्मों, एनिमेशन, वीडियो, तस्वीरों या सोशल मीडिया पर अपने संबोधकों और दर्शकों को इस्लाम की नकारात्मक छवि पेश करते रहते हैं। इनका यह भी प्रयास रहता है कि वहां की संसद में प्रभाव पैदा करके ऐसे कानून बनवाए जाएं जिसके अंतर्गत हिजाब पर पाबंदी हो जाए या इसी प्रकार के अन्य इस्लामी नियमों के विरुद्ध कठोर कानून बनाया जाए। इसी के साथ ये गुट और इनसे प्रभावित मीडिया इस्लामी प्रतीकों और इस्लामी मूल्यों के लिए बहुत ही घृणित और पथभ्रष्ट लक्ष्यों के साथ विकल्प बनाने की कोशिशें करते रहते हैं।
उदाहरण स्वरूप, यूरोप के कुछ देशों में नैतिक भ्रष्टाचार के केंद्रों को मस्जिद की इमारत की शैली के रूप में बनाने की कोशिश होती है। इसके अतिरिक्त यूरोप में रहने वाले मुसलमानों को आए दिन वहां के संचार माध्यमों द्वारा विभिन्न प्रकार के आरोपों को सहन करना पड़ता है। वे मुसलमानों के बीच खौफ और डर का माहौल तैयार करके उन पर दबाव डालते रहते हैं। इन कामों के लिए सबसे अधिक सोशल मीडिया को प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा आज का प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इस बारे में आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, hindi@wsiribir। हमारी वेबसाइट पर आप अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। पता है parstoday.ir/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होने जा रही है। आप सभी से भमनोती चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔